मनोये नित्य योक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेत तेमे योक्त तमामदः। शब्दार्थ श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा मई मुझ में आवेश स्थिर करके मनहा मन को ये जो माम मुझको नित्य सदा युक्तहा लगे हुए उपासते पूजा करते हैं श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक परया दिव्य उपेतहा प्रदत्त ते वे मैं मेरे द्वारा युक्त तमहा योग से परम सिद्ध मतहा माने जाते हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तात्पर्य अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है या कृष्ण विषयक कोई पुस्तक पढ़ता है या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है तो कभी बर्तन धोता है। वह जो भी कुछ करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता, ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशत देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनुवाद दोहराइए। श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो जो भगवद गीता है इसका तो परिचय देने का हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्ण जगत में सर्वत्र हर जगह हर व्यक्ति जानता है भगवद गीता। बट भगवद गीता को पढ़ना और भगवद गीता को गहराई से समझना वो नहीं हो रहा है। तो हम संसार में देखते हैं आज क्या है, संसार में क्लेश ही क्लेश है। हमारे मन से हमको तकलीफ मिलती है, हमारे शरीर से हमको तकलीफ मिलती है, दूसरों से तकलीफ मिलती है, और यहां तक कि हमको ये जो आपदाएं हैं, भूकंप आना, या अभी देखे हम बंबई में बारिश बंद ही नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, आ रहा है तो फिर जा नहीं रहा है, तो ये सब तकलीफ है। इसके अलावा भी हम देखते हैं मन कैसे सताता है हमको। पहले तो हमको समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है और क्या गलत है, वो क्लियर नहीं है, वो पता नहीं है, इसीलिए हम ज्यादातर गलत डिसीजन लेते हैं और फिर उसमें से तकलीफ जो है दुख जन्म लेता है। कुंती महारानी कहती हैं कि संसार में तकलीफ क्यों है। माता कुंती अपनी प्रार्थनाओं में कृष्ण से कहती है कि संसार में तकलीफ के कुछ कारण हैं, तीन कारण हैं, अविद्या काम कर्म भी, अविद्या काम और कर्म, क्योंकि हमारे जो दुष्कर्म हैं उसके कारण हमको क्या मिलता है, दुख मिलता है, उसका परिणाम स्वरूप दुख है। और क्यों दुष्कर्म करता है, काम के द्वारा। ये काम क्या चीज है, तो चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, आत्मे इंद्रिय प्रीति वांछा तहे बोले काम। जब हम कुछ भी अपने प्रसन्नता के लिए करते हैं, अपने इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, उसको काम कहते हैं। जैसे यहां पे बताया प्रभुपाद जी ने इस उदाहरण में, इस तात्पर्य में कैसे उदाहरण दिए कि भक्त जो है वो सदैव कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन किसके लिए करता है, कृष्ण के लिए करता है, तो वो प्रेम है। जो हम अपने लिए करते हैं वो काम है। अब क्यों जीव भगवान के लिए करे और अपने लिए ना करे, क्योंकि भगवान कहते हैं जीवेरे स्वरूप है कृष्णर नित्य दास, कि हम तो भगवान के नित्य दास हैं। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उस कंपनी के लिए ही आपको काम करना है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कंपनी में गए अपना आईडी स्वैप किया अटेंडेंस लगाया और वहां पे बैठ के अपना भेलपुरी बेचना चालू कर दिया ऑफिस में, साइड बिजनेस, और काम नहीं कर रहे हैं तो क्या करेगी कंपनी, आपको निकाल देगी। तो वैसे ही हम भगवान के इस सृष्टि में रह रहे हैं तो भगवान की सेवा करने के लिए, और हम भगवान की जब सेवा करेंगे तो क्या होगा, हमें परम सुख परम आनंद की प्राप्ति होगी, नहीं तो क्यों भगवान बोलते सेवा करो। भगवान हमको वो परम आनंद देना चाहते हैं जो भगवान अनुभव कर रहे हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त अनुभव कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं ये हमारे कुछ भक्त हैं जो भटक गए हैं संसार में, इनको भी हमें परम आनंद का सुख देना है। तो हम दुष्कर्म करते हैं काम के कारण, और काम क्यों करते हैं, यानी हमारे हृदय में काम क्यों प्रकट होता है, अविद्या के कारण। इसीलिए कहती हैं कुंती महारानी अविद्या काम कर्म भी। तो विद्या की जरूरत है, अविद्या अज्ञानता है। जैसे हमने यहां पे लाइट जला के रखी है, क्यों, क्योंकि अभी रात हो चुकी है और बाहर अंधेरा है, तो हमें प्रकाश की आवश्यकता है। अगर ये लाइट बंद कर देंगे तो अंधेरा हो जाएगा, और जब अंधेरा हो जाएगा तो पता नहीं पड़ेगा भगवान कहाँ पे हैं, पता नहीं पड़ेगा किस तरफ बाहर जाना है, किस तरफ अंदर आना है, चप्पल कहाँ उतारी थी पूरे अंधेरे में पता थोड़ी पड़ेगा आप अपनी चप्पल पहन रहे हो कि दूसरे की चप्पल पहन रहे हो। कौन से अलग अलग हमारे यहाँ वैरायटी के बुक्स हैं, आप कौन सी बुक्स लोगे अंधेरे में थोड़ी देख पाएंगे। तो ये अविद्या क्या है? अज्ञानता, अंधेरा है। तो आज संसार में ये तीन तकलीफें हैं, अविद्या, काम, कर्म भी। तो भगवान कहते हैं कि अगर मनुष्य को ये ज्ञान दिया जाए, मनुष्य अगर ये ज्ञान प्राप्त कर ले और अविद्या से, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ चला जाए, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार में मत रहो, ज्योति में आओ, प्रकाश में आओ। तो अगर हम ज्ञान की ओर बढ़ें और ज्ञान प्राप्त करें तो काम और कर्म ये नहीं होगा। काम के जगह प्रेम होगा और कर्म जो होगा वो कृष्ण के लिए होगा, दुष्कर्म नहीं होगा। तो जब प्रेम हो जाएगा और दुष्कर्म नहीं करके हम कृष्ण के लिए कर्म करेंगे तो क्या होगा? दुख नहीं मिलेगा, आनंद में रहेंगे। तो अविद्या को कैसे हटाया जाए? अर्जुन देखिए, अभी अविद्या, काम, कर्म भी तीनों अर्जुन में दिखेगा। हालांकि अर्जुन ने कर्म नहीं किया, करने वाला था, युद्ध छोड़ने वाला था, वो दुष्कर्म होता अर्जुन के लिए युद्ध भूमि छोड़ के जाना। अर्जुन तैयार था, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं जा रहा हूं घर। क्यों कर रहा था? क्योंकि अर्जुन के हृदय में काम आ गया था। अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान ऐसे लीला में अर्जुन को मोहित कर दिए। तो काम क्या है? अर्जुन भगवान की इच्छा जो कि युद्ध करने की थी वो छोड़ के अपनी इच्छा लगा रहा था युद्ध नहीं करने की। है ना, कोई बोल सकता अर्जुन तो दया कर रहा था। ये दया अगर भगवान और गुरु से परंपरा में नहीं आ रही तो वो दया नहीं है, वो भोग है। तो कई बार हम सोचते हैं हम दया कर रहे किसी के ऊपर, तो शराबी व्यक्ति है वो दूसरे को शराब पिलाता है, बोलता है मैं दया कर रहा हूं, तो वो अज्ञानी है, वो दया नहीं है। भक्त कैसे दया करता है? सबसे बड़ी दया अर्जुन के ऊपर की भगवान ने, ये भगवत गीता सुना के, क्योंकि देखा भगवान कि अर्जुन दुष्कर्म की ओर जा रहा है, अपने कर्म को, अपने स्वधर्म को छोड़ रहा है, वो दुष्कर्म है। क्यों? क्योंकि अर्जुन के हृदय में काम जागृत हो गया। और ये क्यों हुआ? भगवान ने देखा जड़ पकड़ा अविद्या के कारण, अर्जुन ज्ञान से अज्ञानता में आ गया, प्रकाश से अंधेरे में आ गया। ये भगवान ने अर्जुन को मोह में डाला था भगवत गीता सुनाने के लिए। अर्जुन मोह में नहीं थे, अर्जुन अविद्या में नहीं थे, हमको गीता सुनानी थी इसलिए भगवान ने यह किया। अब इस अविद्या के कारण क्या हुआ देखिए, हमारे साथ होता है कि नहीं होता है, तो भगवत गीता के पहले अध्याय के 25-26 नंबर श्लोक से चालू हो जाता है। अर्जुन बोलता है प्रभु मेरे हाथ जो है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरी जबान लड़खड़ा रही है और मुंह जो है मेरा वो सूखा जा रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, आंख से आंसू बह रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, क्या सही है क्या गलत है। जो सही है वो गलत दिख रहा है, जो गलत है वो सही दिख रहा है। ऐसा हुआ है हमारे साथ कभी? बहुत बार होता है। एक छोटा बच्चा को एग्जाम आ जाता है तो कैसे टेंशन हो जाती। कोई IIT की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका शरीर कांपने लग जाता है, रोने लग जाता है, क्योंकि उसको भय है कि मैं फेल ना हो जाऊं। तो ये परिस्थिति हमारे साथ होती रहती है और ये अविद्या के कारण है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, करोड़पति अरबपति है और उसका इकलौता कोई बेटा है और बेटा रोने लग जाता है, है 16-17 साल का, एक दिन प्लेटफॉर्म पे बैठ गया, स्टेशन चला गया, प्लेटफॉर्म पे बैठ के रो रहा है। क्यों रो रहा है भाई? बोले मेरा लाइसेंस खो गया। तो कोई रोने की बात है? अरे तुम्हारा पिताजी अरबपति है, कल लाइसेंस आ जाएगा, छोटा सा चीज के लिए रोता है। तो ऐसे हमारे पिताजी कौन है? राधा रास बिहारी, वो लक्ष्मीपति है, और एक नहीं लक्ष्मी सहस्त्र, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में हैं, और भगवान हमें सब कुछ देना चाहते हैं जो उनके पास है, लेकिन हम लोग यहां छोटी छोटी चीज के लिए रोते रहते हैं। तो ये अविद्या है, ये अज्ञानता है। तो इसीलिए भगवान ने गीता सुनाई, और गीता सुनाना सबसे बड़ी दया करना है, क्योंकि किसी को अंधकार से उजाले में लाना वो सबसे बड़ा दया कर रहे हैं आप। कोई व्यक्ति अंधेरे में है, वो बोल रहा है कि मैं खाना कैसे खाऊं, तो आपने बोला ठीक है हम खिला देते हैं, तुम बस बैठे रहो, और आपको देख रहा है, आपने उसको खाना खिलाना चालू किया, वो चबा रहा है खा रहा है ठीक है, फिर बोलता है पानी, आपने पानी पिला दिया, फिर उसको पढ़ाई करना है तो आप पढ़ते गए, वो सुनता गया, पढ़ाई हो गई, अलग अलग कार्य आपने उसको मदद किया, लेकिन कब तक कर पाओगे? इससे अच्छा है कि उसको अंधेरे से निकाल के उजाले रूम में डाल दो और खुद ही खा लेगा, खुद ही पढ़ाई कर लेगा, खुद ही सब कुछ कर लेगा, है ना। जब बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में या स्कूल में रहते हैं, और कभी कभी उनको या तो जल्दी सवेरे उठना पड़ता है, माँ बाप उठा देते हैं 4-4:30 बजे, अंधेरा रहता है बाहर, पढ़ने के लिए बैठा देते हैं, तो उसको जब नींद आती है तो क्या करते हैं, और लाइट चालू कर दो, दो लाइट लगा दो रूम में, तो नींद चली जाती है। हमारे भक्तों को जब जब में नींद आती है अंधेरे के कारण, तो हम क्या करते हैं, फिर लाइट लगा देते हैं। तो अगर अंधकार से उजाले में आते हैं हम लोग, तो हमारा अविद्या जो है वो खत्म होता है, और ये जब अविद्या खत्म होगा तो बाकी सब अपने आप होता जाएगा, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो गया आपको, ये बहुत आवश्यक। तो किसको दया देना है, किसी के ऊपर दया दिखाना है, तो क्या करना चाहिए? ज्ञान देना चाहिए। और इस संपूर्ण सृष्टि में सबसे बड़ा ज्ञान है भगवद गीता। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने डायरेक्ट दिया है, बहुत सारा ज्ञान अलग अलग वेद पुराण उपनिषदों में दिया है, जो कि व्यासदेव ने दिया है, वो भी भगवान के अवतार हैं, लेकिन कृष्ण ने देखा ये इमरजेंसी सिचुएशन है, अर्जुन उस परिस्थिति में था जिस परिस्थिति में हम आज हैं। तो संसार में फंसा हुआ व्यक्ति कोई जिसको जल्दी फास्ट ट्रैक है ना बाहर निकलना है, तो उसके लिए भगवद गीता। तो भक्त कैसे दया करते हैं? ये भगवद गीता का वितरण करके। अभी 8 तारीख को हम लोग श्रीमद भगवद गीता जयंती मनाएंगे, मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान चुने, देखो कौन सा, मोक्षदा एकादशी, जो मोक्ष प्रदान करने वाली है, मोक्षदा, जो मोक्ष देने वाली एकादशी है, उस एकादशी को भगवान ने चुना अर्जुन को, और या तो अर्जुन के माध्यम से हम सबको गीता सुनाई, और आज तक लोग सुनते आ रहे हैं। आप जब इस श्लोक का उच्चारण करेंगे तो भगवान का ही वाणी है वो। अब यहां पे देखिए, संसार में एक बहुत बड़ा अज्ञानता या अविद्या है, जिसको भगवान ने स्पष्ट रूप में गीता में कहा है, फिर भी लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। अलग अलग कारण है, और उसमें है एक प्रमुख कारण, माया अपहृत ज्ञान, माया ने ज्ञान का अपहरण कर लिया है। नहीं तो इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पीएचडी कर रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, लेकिन इतना नहीं समझ सकते जो यहां पे अर्जुन पूछ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह श्लोक है आज का, जिसमें हम भगवान के बारे में समझते हैं। गीता में भगवान ने तत्व बताया, अपने बारे में स्वरूप में कुछ ही जगह बताया। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावको, यहां पे बताते हैं अपने धाम के बारे में, यहां पे अपने स्वरूप के बारे में बताते हैं। बहुत कम ऐसे गीता में श्लोक हैं। तो क्या पूछते हैं अर्जुन? हमने कल देखा, कल के श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि भगवान जो लोग आपके निराकार रूप को पूजते हैं वो श्रेष्ठ हैं कि जो भक्त आपकी निरंतर सेवा में लगे रहते हैं आपके स्वरूप को वो श्रेष्ठ हैं? तो यहां पे क्या पूछ रहा है अर्जुन कि भगवान कौन सा भक्त श्रेष्ठ है जो निर्विशेषवादी ब्रह्म की पूजा कर रहा है, मतलब भगवान कुछ नहीं है, भगवान ब्रह्म है, भगवान का कोई आकार नहीं, भगवान निराकार है, ये निराकारवादी। इस सृष्टि में हर चीज का आकार दिया भगवान ने, अपने आप को आकार देना भूल गए। या उनमें शक्ति नहीं है कि दूसरों को तो आकार दे दिए, एक छोटे छोटे बैक्टीरिया को आप देखेंगे तो उनका आकार होता है। हर चीज का आकार होता है, आपके अलग अलग दांत है उसका अलग अलग आकार है, लेकिन भगवान के पास शक्ति नहीं है कि अपने आप को आकार दे दें। या फिर मूर्ख लोग कहते हैं कि भगवान तो ब्रह्म है, निराकारवादी हैं, और जब यहां पे आते हैं पृथ्वी पे तो माया में वशीभूत हो जाते हैं, माया के बंधन में आके आकार ले लेते हैं जो भौतिक आकार है। तो अगर प्रधानमंत्री देश का सोचे कि चलो बहुत दिन हो गया किसी बड़े जेल में चलते हैं और वहां के कैदियों पर थोड़ा सा दर्शन देते हैं, तो जब प्रधानमंत्री जेल में जाएंगे तो क्या जेल का कैदी जेल का वर्दी पहनेंगे? वो सफेद ड्रेस, लाइन लाइन वाला नाइट ड्रेस जैसा वो पहनेंगे कि अपना ही ड्रेस में आएंगे? जैसा कैदी को लेके आते हैं पुलिस के गाड़ी में बैठा के प्रधानमंत्री, वैसे ही पुलिस की गाड़ी में हथकड़ी बंधा हुआ आएगा कि अपनी टॉप क्लास सिक्योरिटी वाली सिस्टम में आएगा? जब एक मनुष्य जो कि प्रधानमंत्री के रोल में है या राष्ट्रपति के रोल में है वो अपने हिसाब से चल रहा है, तो भगवान के माया के हिसाब से चलेंगे? तो जब भगवान आएंगे तो एक हम जैसे, हम लोग तो कैदी हैं यहां पे संसार में, हम तो फंसे हुए हैं, अपने आप से हम क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी ट्रेन से आ रहे थे उदयपुर से, मेरा टिकट आरएसी था, तो एक व्यक्ति बोलता है, ऐसी बात चल रही थी कि मनुष्य भगवान, तो मैं बोला मैं तो भगवान नहीं हूं, मैं भगवान होता तो टिकट कंफर्म होती ना मेरी, क्यों जमीन पे सो के आना पड़ता? भगवान अपनी टिकट भी कंफर्म नहीं कर पा रहे और टिकट खरीदने के लिए पैसा देना पड़ रहा, लाइन में लगना पड़ रहा, ये भगवान है? प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान का दांत में दर्द हो जाता है और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है वो कैसा भगवान है? बहुत सारे लोग भगवान बोलते हैं अपने आप को, यह है अविद्या, अज्ञानता में है उन लोग। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, संपूर्ण स्वराट, वो जो चाहे कर सकते हैं। और यहां मनुष्य अपना खाना हजम नहीं कर पा रहा और बोलते हैं भगवान है, तो फिर कुछ लोग कहते हैं ठीक है हम भगवान नहीं है लेकिन हम आगे चल के भगवान बन सकते हैं। तो ऐसे कैसे बन जाओगे भगवान, क्या करना पड़ता है? बोले भगवान भी यहां पे आते हैं माया में हो जाते हैं, हम भी यहां पे माया में हैं, भगवान वापस जाते हैं भगवान हो जाते हैं, हम भी वापस जाएंगे भगवान हो जाएंगे। ठीक है, चुनाव चल रहा है क्या? या तो आप भगवान हो या तो नहीं हो, क्योंकि कृष्ण ने तो 6 दिन की उम्र में पूतना का वध कर दिया बिना हथियार के। हम कर सकते हैं? छह दिन की उम्र में कोई बालक किसी का वध कर सकता है? वो तभी भी भगवान थे। तो भगवान भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे, और जो नहीं भगवान है वो नहीं भगवान था, न भगवान है, न भगवान बनेगा। जो नहीं है वो नहीं है, जो है वो है। फिर भगवान को नीचे करने के लिए लोग बोलते हैं भगवान ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्म है, भगवान निराकार है, निर्विशेष शून्य है भगवान। हम सबका रूप है, हम सब एक दूसरे को पहचानते हैं तो रूप से पहचानते हैं। जैसे आप जाएंगे कहीं गौशाला में, हमारा तलासरी में गौशाला है, वहां पे आप जाएंगे तो 100 गाय लाइन से खड़ी होगी, आप पहचान पाएंगे? अलग अलग नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन सब अलग अलग हैं। हम जाएंगे विदेशों में, जैसे कोई हमको पता, हम भारत में रहते हैं तो सबका चेहरा अलग अलग है। आप चाइना चले जाएंगे, आपको लगेगा सब एक जैसे ही हैं। सब एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग है। अफ्रीका चले जाए, आपको लगेगा सब एक जैसे ही हैं। हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन सबका आकार है अलग। तो भगवान का आकार क्यों नहीं होगा बनाने वाले का? तो अर्जुन ने सोचा कि चलो कलयुग में बहुत सारे लोग आएंगे, यानी ये परेशानी पहले भी थी, ऐसे लोग पहले भी थे जो कहते थे भगवान का आकार नहीं है, निराकार, ये जो है पुराना सिस्टम है। तो अर्जुन ने पूछा, अर्जुन ने सोचा भगवान से पूछ लेते। भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अध्याय है ये 12वां नंबर, भक्ति योग। बच्चे बच्चे स्कूल में याद करते हैं 20 श्लोक, लेकिन अंदर समझते नहीं तो क्या फायदा? ठीक है, श्लोक उच्चारण किया, थोड़ा पुण्य का काम किया, लेकिन उसको समझिए ना। उच्चारण करने से पहले या उच्चारण करने के बाद समझिए तो आप क्या उच्चारण कर रहे हैं। तो अर्जुन ने सोचा कि चलो भगवान से ही पूछ लेते हैं। अब भगवान तो सत्य संकल्प है, सत्य सार, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। अगर भगवान झूठ बोलने लग जाएंगे तो बंद कर दो मंदिर, क्यों पूजा करेंगे फिर? झूठे का कौन पूजा करता? क्यों भगवत गीता का इतना महत्व है, फिर बंद कर दो भगवत गीता प्रिंट करना। तो भगवान के वचन धर्म है, भगवान के वचन पूर्ण सत्य है। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं वो अगर हम सुने, समझने का भी नहीं है, साफ साफ भाषा में लिखा हुआ है। भगवान कहते हैं ना, ते में युक्त तमा मतः, ये मेरा मत है। तो देखें क्या कहते हैं भगवान। भगवान कहते हैं जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में, साकार रूप में मतलब आकार, जो मेरे मन में, मेरे मन को, अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अभी अगर आपका स्कूल का प्रिंसिपल बोलता है कि ये स्टूडेंट जो है ये नंबर वन है स्कूल में, और स्कूल के बाहर रोड पे एक मोची बैठा है, वो बोलता है नहीं नहीं वो नहीं, ये जो दूसरा स्टूडेंट है ये नंबर वन है, तो किसकी सुनेंगे? मोची की सुनेंगे ना प्रिंसिपल की सुनेंगे? तो भगवान है वो बोल रहे हैं कि मेरा भक्त कौन है, परम सिद्ध किसको मानता हूं, जो मेरे साकार रूप को श्रद्धा पूर्वक पूजता है और मेरी सेवा में रत रहता है। अरे इतना सुंदर रूप है भगवान का, इतने कविताएं लिखी, इतने भजन लिखे आचार्यों ने, इतना गुणगान हुआ है वैष्णव द्वारा, जिस रूप को देखने के लिए ब्रह्मा जी शिव जी छोड़िए लक्ष्मी जी तरस जाती हैं, वो रूप को हम निराकार कर दिया। ईर्ष्या है लोगों की भगवान से। तो भगवान कहते हैं यहां पर, एक ईर्ष्या के कारण करते हैं, एक आलस के कारण करते हैं। लोग बोलते हैं भगवान निराकार है, सेवा नहीं करना पड़ेगा, आकार आ जाएगा तो फिर फूल लगाओ, फल लगाओ, भगवान का ड्रेसिंग करो, मंदिर बनाओ, इतना कहाँ, इससे अच्छा मैं थोड़ा सो जाऊंगा एक्स्ट्रा, तो इसलिए निराकार, भगवान को निराकार बना दी। अच्छा फिर जो ढोंगी ढोंगी गुरु होते हैं वो भगवान से अपने आप को ज्यादा कैसे करेंगे? देखिये प्रभुपाद जी, हाँ, एक बड़े महान भक्त, ऊंचे स्तर के वैष्णव, वो क्या किए, वो संस्था का नाम कृष्ण के नाम पे दिए, अपने नाम पे नहीं दिए। उन्होंने मंदिर बनाए कृष्ण के, और ढोंगी गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, मंदिर बनवा लेते हैं पब्लिक से पैसा लेके और खुद बैठ जाते हैं। भगवान कहाँ है वो साइड में कहीं, थोड़ा थोड़ा अलग अलग फोटो लगा देते हैं और वहां पे हुंडी रख देते हैं, पैसा आता रहेगा। तो ये जो ढोंगी लोग होते हैं वो अपने आप को भोगने के लिए, अपने फायदे के लिए उन लोग क्या करते हैं, भगवान को निराकारवादी बताते हैं। अरे भगवान को क्या भोग लगाना निराकारवादी, हम ही ब्रह्म है, भगवान भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है। सही बात है, हम भगवान के बच्चे इसलिए हम ब्रह्म हैं, लेकिन भगवान बाप है इसलिए वो परब्रह्म है। हम आत्मा है वो परमात्मा है, हम ईश्वर हैं छोटे छोटे से, वो परमेश्वर हैं। तो यहां पे भगवान स्वयं कहते हैं अब कैसे सेवा करनी चाहिए। चलो साकार रूप हो गया, अब सेवा कैसे करेंगे, सबसे पहले नाम जप करो भगवान का। जप करने के लिए बोला, मन में उच्चारण करने ने बोला। आपको अगर भूख लगेगी, आप घर में जाएंगे अपना माँ को बोलेंगे कि खाना खिलाओ, आपकी माँ बोलेगी ठीक है मैंने मन में पकाया है, मन में तेरे सामने रख दिया है, तू मन में खा ले, चलेगा आपको? तो मन में क्यों भजन करते हैं, उच्चारण करके भजन कीजिए। भगवान ने जीवा दी है, दिन भर पड़ 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 बोलते रहते हैं, हाँ, संसार की बातें भगवान का नाम नहीं ले सकते, तब मन में करना है। एक व्यक्ति को हमने बोला, ऐसे बहुत सारे हैं, हमने बोला कि आप भगवान के नाम का जप करो, प्रभु तो मेरे हृदय में है, मैं सदैव प्रभु का चिंतन करता रहता हूं। तो टीवी क्या देख रहा है, उसमें भी चिंतन होता है क्या प्रभु का? बिल्कुल, ये मायाबद्ध जीवन, ये सब बहाने हैं लोगों के। फिर गीता पढ़ो तो, क्योंकि अविद्या से अज्ञानता से बाहर आना है। आज संसार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिसीजन मेकिंग, किसको समझ में नहीं आता कि डिसीजन क्या लू, सही क्या है, गलत क्या है, कंफ्यूजन है बहुत, क्योंकि हम अज्ञानता में। तो गीता पढ़िए, वो क्लैरिटी आएगा। और क्या बोल रहे प्रभुपाद जी, कितनी सेवा है, ये जो जिस मंदिर में आप बैठे हैं ये 1971 में एक होटल को दिया जाने वाला था, तो फिर प्रभुपाद ने ले लिया, थोड़ा संघर्ष हुआ, फिर ये प्रभुपाद को जमीन मिल गई पूरी, नहीं तो यहाँ पे एक 5-स्टार होटल बनने वाला था। तो 5-स्टार होटल में भी वही ईटा लोहा रेती सीमेंट लगता जो इसमें लगा है, 5-स्टार होटल में भी ऐसा झूमर लगता जो यहाँ लगा है, दिखने में स्ट्रक्चर वही है। 5-स्टार होटल बनाने के लिए भी वही काम करते वहां के लोग, और मंदिर बनाने के लिए मंदिर के लोगों ने काम किया, लेकिन फर्क देखिए, यहां भगवान का पूजा होता है, यहां भक्ति होती है, और होटल में पाप होता है। तो दोनों दिखने में एक जैसा लग सकता है, कोई भक्त जाके 24 घंटा बोल रहा है लेकिन कृष्ण के बारे में बोल रहा है, और कोई बैठ के संसार की बातें कर रहा है। तो दोनों ही बोल रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं, एक भगवान के लिए कर रहा है, एक अपने मतलब के लिए कर रहा है। वो भक्ति है जो भगवान के लिए कर रहा है, जो अपने लिए कर रहा है वो भक्ति नहीं, और इसीलिए उसको दुख मिलता है। और कुछ भी सेवा करिए, आप लोग मंदिर आइए, नाम जप कीजिए, पुस्तक पढ़िए, पुस्तक वितरण करने में सहायता कीजिए, जाइए लोगों को अज्ञानता से निकालिए। कितने लोग हैं बंबई में आज, पॉपुलेशन 2 करोड़, 2 करोड़ में से कितने लोग दुखी हैं, 2 करोड़ और 1 लाख। 1 लाख क्यों, क्योंकि 1 लाख लोग सुना हर साल हर दिन बॉम्बे आते हैं नए लोग, तो आज जो आ गए वो भी दुखी हो गए ना। तो सब लोग तो दुखी है, फिर सुखी कौन है? अरे कोई तो सुखी होना चाहिए ना। जिसके पास पैसा है वो भी दुखी, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी, जिसके पास नौकरी है वो भी दुखी, जिसके पास नौकरी नहीं है वो भी दुखी, जिसका शादी हो गया वो भी दुखी, जिसका नहीं हुआ वो भी दुखी, जिसके बच्चे हो गए वो भी दुखी, जिसके बच्चे नहीं वो भी दुखी, जो स्कूल जाता है वो भी दुखी है परेशान है, जो नहीं जाता है वो रोता है मैं क्यों नहीं जाता हूं। बड़ा भाई को स्कूल देख के 2 साल का छोटा भाई रोने लगता है मैं भी जाऊंगा, भैया जा रहे हैं मैं भी जाऊंगा, 1 साल बाद ये जाता है रोना चालू कर देता है कि मैं क्यों स्कूल जा रहा हूं। उधर बंधन लग जाता है, टीचर पकड़ के बैठा देती है। तो सुखी कौन है? एक तो कैटेगरी बताइए, एक तो मनुष्य बताइए, 2 करोड़ में से कोई सुखी हो? सुखी सिर्फ भगवान का भक्त है, आनंद में सिर्फ भगवान का भक्त है और कोई नहीं है। क्योंकि भगवान परमानंद घन है, हम भगवान के बच्चे हैं, आनंद तो हमारा जन्म से अधिकार है, लेकिन क्योंकि हमने भगवान से मुंह फेर लिया है, बहिर्मुख हो गए, तो इसलिए दुख भोग रहे। ये मंदिर खुला हुआ है, सवेरे जब सूर्योदय होगा तो बहुत रोशनी आएगी, यहाँ पे हवा चलेगी, लेकिन आप अपने घर में पूरा खिड़की दरवाजे बंद करके पूरा काला कपड़ा लगा के अंधेरा कर देंगे और सवेरे का 10 बज गया अभी तक सूर्य नहीं होगा क्या? आज सूर्यदेव सो गए क्या? अपना सेवा में आए नहीं, सूर्य किधर से दिखेंगे? आपने तो अपने खिड़की दरवाजे बंद करके काला कपड़ा लगा के काले पर्दे लगा के सब बंद कर दिया, तो कैसे आपको रोशनी दिखेगा? तो भगवान तो है, आनंद तो है, लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो। तो भगवान का नाम जप करके, भगवान के बारे में ये ग्रंथ पढ़ के, ग्रंथों का प्रचार करके और सबको मंदिर ला के सेवा करिए। झाड़ू लगाना बोलते हैं सेवा करिए, कुछ भी भगवान के लिए है वो सेवा है, उससे आपको आनंद मिलेगा। इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पे, जुड़ते हैं, छोटा मोटा सेवा करते हैं, सिर्फ भगवान का दर्शन लेना यह भी सेवा है, भगवान को प्रणाम करना यह भी सेवा है, भगवान का आरती अटेंड करना यह भी सेवा है, चरणामृत लेना यह भी सेवा है। लेकिन सबसे सरल और महत्वपूर्ण है भगवान के नाम का उच्चारण करना। आप कहीं भी 24 घंटा भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं, हर परिस्थिति में। आप नहाए नहीं नहाए, आप स्कूल में है, कॉलेज में, ऑफिस में, घर में, मंदिर में, बाहर है, कहीं पे भी आप ये नाम का उच्चारण कर सकते। तो ये नाम का उच्चारण करिए, अविद्या से बाहर निकलिए, तब आपको समझ में आएगा कि भगवान जो है वो निराकार नहीं, उनका सबसे सुंदर, सर्व सुंदर, अति सुंदर उनका आकार है जो लक्ष्मी के भी मन को मोह लेता है। तो ये सब कैसे पता पड़ेगा? ये नाम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौरताय की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।
वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा।